ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भागवत का भी चर्चा होगा, साथ साथ लोचन दास ठाकुर के बारे में भी समय के आधार पर बोलेंगे, नहीं तो पूरे क्लास भी तो नहीं होने से उसके लिए सफिशियंट नहीं है। लोचन दास बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमें भागवत का भी कंटिन्यूस जैसे होता है तो 8:30 तक कम से कम भागवत क्लास चलेगा, उसके बाद फिर है। लेकिन आज बहुत श्लोक है, एक साथ श्लोक 23 से लेकर, मुझे कहा गया 23 नंबर श्लोक से लेकर 35 नंबर श्लोक तक है। तो मैं पहले 23 सीधे पढ़ रहा हूँ, 23 नंबर से 34 नंबर श्लोक तक है इसकी अनुवाद। इति ब्रुवाण वन्य अन्यो धर्म जिज्ञासया नृप युधाते महावीर्य इन्द्रपुत्रौ युधाम्पतिः इन्द्रवृत्तौ युधाम्पति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भी भक्ति योग के संबंध में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली थे। आविध्य परिधम वृत्तः कृष्णः अयस अरिन्दमः इन्द्राय पाहिनात् घोरम वामहस्तेन मारिषः। हे महाराज परीक्षित, आपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण सक्षम वृत्रासुर ने अपना लोहे का परिध उठाकर चारों ओर घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उस पर फेंका। स तु वृत्तस्य परिधं करंच करभो पवम छिदे चिच्छेद जुगपतिवो वज्रेण सतपर्वणः। इंद्र ने अपनी सत पर्वत नामक वज्र से वृत्रासुर की परिधि तथा उसके बचे हुए हाथ खूब एक साथ खंड खंड कर डाला। दभ्याम उत्कृतः मूल्याभ्याम बभौ रक्तस्रवः असुरः छिन्नपक्ष यथा गोत्र का भ्रष्टं वज्रिणांगतः। जल से दोनों भुजाओं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था, जिसके पंख को इंद्र ने खंड खंड कर दिया हो। महाप्राणो महा, इसमें थोड़ा सा तात्पर्य दो लाइन है। इस श्लोक में यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पंख इंद्र के वज्र द्वारा काट दिए गए। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव दीपम कृत्वाधरांग हनु भूमौ दैत्य दिव्युतरांग हनु नभोगंभीर वक्त्रेण लेलिहा लवणा जिह्वा दंष्ट्राभिकाल कल्याभिग्रसत्रीव जगत्त्रयम् अतिमात्र महाकाय क्षीपंस्तरसा गिरिन् गिरिराट पादचारीव पदभ्यां निर्जरयन् महिम् जग्रासस समासाद्य वज्रिणं सबाहनम्। वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा वीर्यवान था। उसने अपने निचले जबड़े को भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में गड़ा दिया। उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो आकाश हो और उसकी जीभ बहुत बड़े सर्प के सदृश लग रहे थे। अपने काल के समान कराल दांतों से वह संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करता प्रतीत हुआ। इस प्रकार विराट शरीर धारण करके उस महान असुर वृत्रासुर ने पर्वत तक को हिला दिया और अपने पांव से पृथ्वी के सतह को इस प्रकार मर्दित करने लगा मानो वह चलता हुआ साक्षात हिमाचल पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो। वह इंद्र के सामने आया और उसके वाहन ऐरावत के समेत उसे इस प्रकार निगल गया मानो एक बड़े अजगर ने हाथी को निगल लिया हो। वृत्रग्रस्तम तमालोक्य सप्रजापतय सुरः हा कष्टम इति निर्विण्य चक्रुषु महारिषय। जब देवताओं ब्रह्मा समेत अनेक प्रजापतियां तथा अन्य बड़े बड़े साधु पुरुष ने देखा कि असुर ने इंद्र का निगाल लिया है तो वे अत्यंत खुशी और अत्यंत दुखी हुए और हाय हाय कितनी बड़ी विपत्ति है कह करके विलाप करने लगे। निर्गिण्य अपि असुर इंद्रेण न समार आदरम गत महापुरुष सम्मथ जोग माया बड़े नच। इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। उस कवच के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति से संरक्षित होने पर राजा इंद्र वृत्रासुर द्वारा निकले जाने पर भी उस असुर के उदर में मरा नहीं। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्राम्य बलभित विभु उच्चकर्त शिरः शत्रु गिरिशृंगम इव ओजसः। अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने अपने तुरंत बाद वृत्रासुर के पर्वत सिंह जैसे उच्च शिर को काट लिया। वज्र तु तत्कंधरम आशु वेग कृतान समन्ता परिवर्तमान निपातयन तावत् अहगणेन ज्योतिषाम अयनिवर्त हत्ये। यद्यपि वज्र वृत्रासुर के गर्दन को चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था। वज्र वृत्रासुर के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था किंतु उसके शरीर से सिर को विलग करने में पूरा एक वर्ष 360 दिन लग गया। जो सूर्य चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों के उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में लगने वाले समय के तुल्य है तो वृत्रासुर के वध का उपयुक्त समय जो उपस्थित होने पर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो कितना है? तो ये देवताओं के साल में एक साल लगा ना मनुष्य के साल में हैं? मनुष्य के साल में देवताओं के एक दिन तो भाष्य किसका भाष्य? टीका रखना पड़ेगा इसके ऊपर आपका है? क्यों, ये अपना टिप्पणी दे रहे हैं ना, वो कैसे कैसे पता लगाएगी एक दिन की? वो आचार्य की टीका पढ़े, प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं इसमें। हाँ, तदा चे दुंदुभय विनेदु गंधर्व सिद्धा समहर्षि संगा वार्तघ्न लिंगहीतम अभिष्टवाना मंत्रही मुदा कुसुमयी अभ्यवर्षन। वृत्रासुर के मारे जाने पर गंधर्व तथा सिद्धों ने हर्षित होकर स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजाई। उन्होंने वृत्रासुर के संघर्ता इंद्र के शौर्य का वेद स्तोत्र से अभिनंदन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर फूलों की वर्षा की। और अंतिम श्लोक है 35 नंबर श्लोक, इसमें तात्पर्य है। वृत्रस्य देहात् निष्क्रांतम् आत्मज्योति अरिन्दमः पश्यताम् सर्वदेवानाम् अलोकम् समपद्यतः। अनुवाद, वृत्रस्य वृत्रासुर के देहात शरीर से निष्क्रांतम निकली हुई आत्मज्योति ही आत्मा, जो ब्रह्म तेज के समान प्रकाशमान था, अरिंदमः शत्रुओं का दमन करने वाले हैं राजा परीक्षित, पश्यताम देख रहे थे, सर्वदेवताम जब सभी देवता, अलोकम ब्रह्म तेज से पूरी परम धाम, समपद्यत प्राप्त किया। अनुवाद, तात्पर्य, कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा परीक्षित, तब वृत्रासुर के शरीर से सजीव ज्योति निकलकर बाहर आई और भगवान के परम धाम को लौट गई। सभी देवताओं के देखते देखते वह भगवान शंकरसन का संगी बनने के लिए दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि वास्तव में वृत्रासुर नहीं अपितु इंद्र ने मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृत्रासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला, अतः वह लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं सोचा, अब मुझे भगवान के परम धाम को जाना है। इस प्रकार सोचते हुए अपने सारे शारीरिक कार्यकलाप को बंद कर दिए और वह समाधि धारण कर ली थी। वृत्रासुर के शरीर की मौनावस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृत्रासुर के समाधि के कारण बाहर निकलाया, क्योंकि वृत्रासुर योग समाधि में लीन था। अतः यद्यपि इंद्र उसकी गर्दन काट लेना चाहता था, किंतु वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि उससे खंड खंड करने में इंद्र को पूरी 360 दिन लग गए। वास्तव में इंद्र ने वृत्रासुर के उस शरीर के खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृत्रासुर नहीं मारा गया, वृत्रासुर अपने आदि मूल चेतना में ही भगवान शंकरसन का संगी बनने के लिए भगवान की परम धाम चला गया। यहाँ पर आलोकम शब्द दिव्य लोक वैकुंठ लोक का बताता है, जहाँ शंकरसन नित्य निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत वृत्रासुर की जशस्वी मृत्यु नामक 12वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर कहा जाता है कि प्रकृति में वृत्रासुर को इंद्र नहीं मारा, वृत्रासुर ने स्वयं समाधिस्थ होकर शरीर त्याग दिए हैं। जैसे परीक्षित महाराज की बारे में भी कहा था, परीक्षित महाराज को तक्षक दंशन किया ना, तब वो तक्षक दंशन से वो शरीर त्यागे नहीं, पहले से ही समाधिस्थ हो गए थे। कौन? परीक्षित महाराज पहले से ही संपूर्ण रूप में भगवान के चिंतन में समाधिस्थ थे, समाधिस्थ स्थिति में वो शरीर त्याग हुआ, मरा हुआ शरीर को तक्षक दंशन किया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ऐसे महाभागवत वैष्णव हैं और इंद्र जैसा व्यक्ति पास में ये शक्ति नहीं था इनको वध करना है, लेकिन उन्हें स्वेच्छा से जब जब पहले तो इनके इंद्र ने तो उनके वज्र के माध्यम से इनके दो हाथ को काट लिया है और दोनों हाथ यहाँ से जड़ से कट गए थे और केवल शरीर के साथ मुख्य वो क्रोधित होकर मुख खोले और पूरे इंद्र के हाथी के समय तो उसको निगल ली है। कितना विशाल है इंद्र का हाथी, कितनी विशाल होगा इंद्र के साथ उसका हाथी के समय तो उसको पूरा अंदर में निगल ली, निगल लिए तो सब हाहाकार करने लगे, कौन देवतागण हाहाकार करने लगे है, क्या क्या क्या, हो, क्या होगा अभी, इंद्र तो गया हमारा राजा को है निगल लिया वो देवताओं के राजा को है इंद्र को और हाथी उसका हाथी को भी। लेकिन इंद्र के पास में नारायण कवच वो धारण कर रखा था, भगवान नारायण की रक्षा कवच को धारण करने के कारण वो अंदर में वो निगल लेने पर भी उसका मृत्यु नहीं हुआ। किसका? इंद्र। और एक किसी के पेट में भी इसे निगला था और पेट के अंदर में सारे बच्चे को काट के खंड खंड कर दिया था। किसका? अदिति है, अदिति भी तपस्या कर रहा था इंद्र को मारने के लिए, इंद्र को वध करने के लिए व्रत रखता था, इसलिए कौन सा व्रत रखता था, पुंसयन व्रत धारण की थी कश्यप मुनि के निर्देशन में। यदि कश्यप मुनि कहेगी तू ये व्रत धारण करने में सफल हो जाओगी तो वो इंद्र को मारने वाला पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेगा, लेकिन तू व्रत को यदि व्रत यदि धारण नहीं कर पाओगी तो फिर जो जन्म होंगे सब इंद्र के मित्र बनेंगे है। लेकिन वो तो राक्षसी थी, वो तो धारण नहीं कर पाई क्योंकि उसमें नियम कई नियम था, कड़क नियम व्रत के समय में एक महीने तक बा गर्भ जब तक धारण करके रखी है। तो उसको कहा था कि दिन में सोना नहीं, खाने के बाद हाथ ऐसे झूठा हाथ में नहीं सोना, झूठा मुख झूठा हाथ धो के परिष्कार हंसना। तो ये तो क्या करिए, साक्षिक स्वभाव, एक दिन खाया, खाने के बाद भोजन हाथ पाए धोने का भूल गई, ऐसा सो गई। तो इंद्र ने देखा कि व्रत तोड़ दिया नियम है तो उसके मुख में घुस गए, क्या उनकी मक्खी उनकी ऐसे गुर गए सूक्ष्म रूप में, अंदर में जाकर फिर उसके जब गर्भ को काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। कितना टुकड़ा किया? बोले सात, फिर उसको सात, लेकिन वो फिर भी वो जीवित रहे हैं। वो लोग कहे कि अरे कहूँ कहूँ काट रहा, हम लोग तुम्हारी मित्र बनेंगे हैं, तुम्हारी भाई बनेंगे 49 मुहूर्त के। यहाँ पर ये वृत्रासुर के गर्भ में जब वृत्रासुर स्वयं इसको निकल लिया, अंदर में आ गया, अंदर में आकर रक्षा कवच नारायण के स्मरण करके नारायण रक्षा कवच के माध्यम से रक्षित मैंने सुरक्षित रहा। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते कि जो ओरिजिनल कमेंट्री में कह चुके अत्रैव दैव वृत स्वाहनम इंद्रम जग्रास है, वृत स्वाहनम इंद्रम जग्रास है। वृत्रासुर ने क्या किया? स्वाहन, उसका वाहन हाथी के साथ ही इसको निगल लिया। स्वाहनम इंद्रम जग्रास तद्दैव ममहंता अन्य कोपी नास्ती। तो वृत्रासुर ने सोचा इसको तो मैं निकाल लिया पेट के अंदर, बस वो डाइजेशन हो जाएगा और इसका मेरा शत्रु खत्म हो गया, कौन इंद्र का मृत्यु हो गया। तभी वो उन्होंने सोचे कि और कुछ लाभ नहीं है, ये भव सगर ये भव भौतिक संसार में रहने का कोई लाभ नहीं, ऑलरेडी दो हाथ तक इसको कट चुका है। तो उन्होंने सोचे कि कोपी नास्ती इति निश्चित्य जोग बड़े नैव देहं त्यक्त्वा, अपने जोग बल से ही वृत्रासुर ने अपने शरीर को त्यागने की सोचा। कथं न शीघ्रं भगवत पार्श्वजामिति विभाव्य, सोचे कि बहुत जल्दी से जल्दी मुझे मेरे भगवत पार्षद अर्थात शंकरसंघ के पार्षद रूप में उनके धाम में जाकर सेवा में लग जाना चाहिए, भौतिक संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर समाधिस्थ हो गए, कौन वृत्रासुर समाधिस्थ हो गए, भगवान शंकर अपने इष्ट को चिंतन करके पूरे समाधि में आ गए। लेकिन ये इसको तो कुछ मूर्ख पता नहीं अंदर में था है? तो इसलिए अंदर में ये क्या किया, उसका पेट को फाड़ के अपने वज्र के माध्यम से पेट को फाड़ दिया और बाहर निकल आया, कौन इंद्र। इसलिए कहते कि ये क्योंकि समाधि में था, वृत्रासुर समाधि में थे इसीलिए उनकी जो गर्दन है ये बहुत कठिन हो गया था, एकदम हार्ड हो गया था, इसको काटने में इसको कितना टाइम लगा? एक साल तक लग गया है।
इसलिए यीशु प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में कोट करते कि वृत्रासुर वृत्रा ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका में कहा गया कि प्रकृति में वृत्रासुर को मारे गया, इंद्र ने ही मारा, वो स्वइच्छा से स्वयं समाधिस्थ होकर शरीर को त्याग दिए थे, क्योंकि जब निगल लिए इंद्र को, इंद्र के साथ उसका हाथी के समय उसको निकल लिए तो उधर में चला गया, लेकिन वृत्रासुर में निश्चिंत हो गया, वो बस अंदर में गया, वो इंद्र का काम खत्म हो गया, सोचे मेरा शत्रु तो निहत तो हो गया, अभी और क्या करना, मुझे अभी मेरे साथ मेरे प्रभु के चरण में इनकी पार्षद के रूप में इनकी सेवा करने के लिए मुझे वहां आध्यात्मिक जगत में पधार जाना चाहिए, शंकर स्वयं के चरण अरविंद में ये कहकर वो समाधिस्थ होकर, जो समाधिस्थ थे उसी समय इंद्र क्या क्या अपने वज्र के माध्यम से इनके पेट को काट के बाहर आ गया, क्योंकि समाधिस्थ होने के कारण गर्दन बहुत हार्ड हो गया था, तो काटते काटते इसको कितना दिन लगा, एक साल तक लग गया था। तो यहीं पर भागवत की चर्चा समाप्त कर, क्योंकि फिर लोचनदास ठाकुर के बारे में भी बोलना है। तो लोचनदास ठाकुर ये महान वैष्णव आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं, चैतन्य लीला गौर नित्यानंद की लीलाओं के बारे में जो जानना चाहते हैं, तो तीन मुख्य ग्रंथ उसके लिए उपादेय हैं, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर हैं, चैतन्य लीला व्यास, वृंदावन दास, तारो कृपा बिना नहे अन्यत्र प्रकाश, और कहीं पर वो चैतन्य लीला के आदि व्यास उनको माना जाता है, किनको, व्यास अवतार माने जाते हैं वृंदावन दास ठाकुर, इन्होंने पहले लिखा क्या, चैतन्य भागवत है, तहार उचिष्ट अमी करे चरवण, ये भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं, मैं उनका उचिष्ट खा रहा हूँ, किसका, चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर के। इसके बाद वृंदावन फिर चैतन्य चरिता में तो लिखे हैं कौन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन प्रारंभ से जो वृंदावन दास ठाकुर के रचना का नाम था चैतन्य मंगल, वो लेकिन बाद में जब ये लोचनदास ठाकुर अपने गुरु नरहरि सरकार के निर्देशन के आधार पर फिर कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखने लिखे तीसरे पुस्तक में, तब सब लोग बोले कि ये भी अपना ग्रंथ का नाम रख दिया क्या, चैतन्य मंगल, फिर दो चैतन्य मंगल लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, पूर्ववर्ती आचार्य परे हैं वो चैतन्य मंगल रखे हैं, तो इसलिए वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोचनदास ठाकुर और अन्य सब वरिष्ठ वैष्णव इष्ट गोष्ठी करके तो कहे कि नहीं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने व्यासदेव व्यास अवतार है और इसलिए उनकी किताब के नाम क्या रखना चाहिए, चैतन्य भागवत, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ के नाम चैतन्य भागवत रहा, आलोचन दास ठाकुर के जो किताब उसके नाम रहा चैतन्य मंगल। ये तीनों किताब में चैतन्य मंगल पंचाली छंद की स्टाइल में वो लिखे हैं और बड़े स्कॉलरली है, इसमें भाषा थोड़ा बंगला में लिखने पर भी भाषा थोड़ा मैंने थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा कठिन भाषा, साहित्यिक भाषा इसमें प्राप्त होता है। सबसे सरल में लिखा गया गांवली भाषा में कौन सा, चैतन्य भागवत, इसको कोई भी पढ़ के गांव के लोग भी समझेंगे, कोई भी पढ़ के समझ, सरल भाषा में, इसमें ज्यादा संस्कृत पंथ की संस्कृत भी नहीं है। चैतन्य चरितमित में बहुत है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी, प्रभुपद के चैतन्य चरितमित पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है, इसमें बहुत सभी जगह से पुराण से उपनिषदों से गोस्वामी को टीका से बहुत जगह से कोट किया गया, उसमें थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बड़े सावधान से पढ़ना पड़ता है। लेकिन चैतन्य मंगल भी साधारण गांव के लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत है, बंगाली जो बंगाली जानते भी फिर भी, लेकिन बड़े स्कॉलरली लिखा गया इसलिए इसको भी प्रशंसा की जाती, पंचाली ढंग से छंद के साथ ऐसे ही आवृत्ति करते हुए उन्होंने गाया इसको अपने गुरु के निर्देशन में। कौन इनके गुरु, नरहरि सरकार, शिखंडवासी, खंड में दो नरहरि रहते हैं, एक नरहरि चक्रवर्ती और दूसरा नरहरि सरकार, दोनों एक ही नरहरि नहीं, दोनों एक ही गांव में रहते, लेकिन फिर भी नरहरि चक्रवर्ती जो हैं वो चैतन्य ने सरी चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को ब्रजलीलाओं को भी उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ में रचना की है, उसके नाम है भक्ति रत्नाकर, वो चैतन्य वो है नरहरि चक्रवर्ती, ये चैतन्य ने जो भक्ति रत्नाकर की रचना की है, इसमें भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के कुछ वर्णन मिलता है। लेकिन और नरहरि सरकार जिनको हम गौर आरती में देखते हैं, नरहरि आदि करी श्यामर डोला है, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए, वो नौरारी सरकार है। जिनके शिष्य थे कौन? लोचनदास ठाकुर। उन कहते चैतन्य मंगल के प्रारंभ से कहते कि मैंने प्रणति विनती करूं है तहारा चरण है, किसके चरण है? नौरहरि सरकार है, वही मेरे गुरु है, मेरे इष्ट है, मेरे प्राण है, तो उनकी आदेश को पालन करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को थोड़ा जितने संभव उतनी मैं वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए ये, लेकिन उनकी जन्म तो ऐसे ही नौरहरि सरकार नहीं, सर इनकी लोचनदास ठाकुर की वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के को हैं, जो ये अभी है काटवा, काटवा के आसपास में वहाँ गांव है को ग्राम है, को ग्राम में इनकी जन्म हुआ था। पिताजी इनके कमलाकर और माता सदानंदी हैं, इनकी पिता माता थे ही बड़े बचपन से ही बड़े वैरागी थे, संसार के प्रति इनकी आसक्ति नहीं था। उन दिनों में कहा जाता कि बचपन से ही शादी हो जाता था, दस महीने शादी का बचपन। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे हमारे जो लड़के मेरे जो बहन थी उसके 12 साल जो हो गया था, मेरे माँ ने चिल्ला रही थी शादी क्यों नहीं करा रहे इसके। बाल्य शादी, बाल्य विवाह का प्रथा आज भी चलता है बिहार और कई जगह, बचपन शादी करा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे होते हैं लड़का लड़की शादी हो जाते हैं, और बाद में वो जो बड़े बड़े उम्र हो जाता है फिर वो दोनों फिर ससुराल को आती है कन्या, फिर वो मिलते हैं। बाल्य प्रथा को तो बंद किया, लेकिन प्रभुपाद जी सपोर्ट करते हैं बाल्य प्रथा, बाल्य विवाह प्रथा। किस लिए? क्योंकि ये जो सेक्स डिजायर है जिसके लिए हम यहाँ पर भटकते हैं संसार में, तो ये जो लड़की की जब थोड़ा बड़ा होती है उसको पता चलती है, पता चले मेरे हस्बैंड वही है, उसी के साथ मेरे संपर्क हुआ, इसलिए वो उसी की चिंतन करती है, उसी के साथ जो संपर्क है उसके चिंतन उसी के साथ होती है, वो कोई इलिसिट चिंतन नहीं करती है। इलिसिट सेक्स डिजायर जो है उससे बचने के लिए, तो जो भी है तो उनके शादी शादी हो गया था बचपन में, लेकिन ये तो बैरागी थे, अपने गुरु के पास में आके रहते थे, नौरहरि सरकार के पास में शिखंड में रहते थे। आप वहाँ को ग्राम त्याग करके गुरु के ग्राम में आकर रहते थे, और वहाँ रहकर मैंने भागवत गीता भागवत चैतन्य लीला ये सब पढ़ के दिन रात भजन में बिताते थे। लेकिन जो ससुरालय में उनका उनका जो जो पत्नी जो बड़ी हो गई, तो उनके ससुर ने खबर भेजा, उन्होंने आए आन के उनके बोले कि वो तो अपने गुरु का घर में रहता है आता नहीं है, बरागी बन गया। तो इसलिए उन्होंने आके उन्हें कहा कि देखो नौरहरि सरकार को कहा कि आपके शिष्य को भेजो, वो शादी किया है बचपन में, तो उसका पत्नी अभी उम्र की हो गई है, उसको जाना है हमारे घर में आना चाहिए इसको। तो फिर सब नौरहरि सरकार बोले कि ठीक है तुम जाओ, तुम यदि विवाह किए हो जाओ, गृहस्थ जीवन भी गृहस्थ भी एक आश्रम है तुम जाओ। लेकिन वो गुरु कहने पर आए, लेकिन लेकिन आए जब ससुर घर के गांव को घुसे, उनको पहले कोई भी बहुत दिन पहले गए उनको पता नहीं था रास्ता कहाँ है क्या है, ससुर का घर कहाँ पर है, लेकिन देखे कि एक लड़के ने पानी पानी उठा रहे, किसमें? कुआं से बर्तन इनके रस्सी में बकड़ बांध के पानी उठा रहे। तो उसी को पूछे माता जी ये व्यक्ति का घर जानते हो कहाँ पर है? उस माताजी कही कि माताजी कही तो पूछे तो हूँ, बोले हाँ ये रास्ते में जाइए गली में वो घर है। लेकिन वो जाकर जब ससुर के घर में पहुंचे, उन्हें पता लगा कि जिसको उन्होंने पूछा था रास्ता वही उनके पत्नी है। लेकिन बोले मैं एक बार उसको माताजी बोल दिया, दोबारा मैं दूसरे दृष्टि में नहीं देख सकती हूँ। तब से फिर उनको माता दृष्टि में ही देखने लगे और उनके साथ कोई संपर्क नहीं स्थापना किया, पति पत्नी का संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने अपने ससुर को प्रणाम करी, कहे कि देखो मैंने ये इसी लड़की को ही रास्ता पूछा था पानी, तो जो आपको जिसु कह रहे कि ये तुम्हारी पत्नी है, मैंने इसको प्रथम दर्शन में ही किस रूप में संबंधित किया? माता के रूप में, इसलिए मैं दोबारा इसको पत्नी रूप में नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। ये कहकर ससुर भी समझ गया और क्या करें, बैरागी व्यक्ति सब राजी हुए, फिर वो वापस चले गए अपने गुरु के पास है। और इनकी ऐसे ही स्थिति देता है, गुरु जी ने भी इनको अनुमोदन किया, ठीक है तुम्हारा आसक्ति नहीं है संसार में तो फिर यही रहो भजन करो। इसलिए गुरु के आश्रम में रहकर वहीं भजन करता, और गुरु जी ने आदेश दिया कि इनको लिखने के लिए चैतन्य लीला कुछ लिखने के लिए इनकी गुरु जी ने इनको आदेश दिए। तो इसलिए ये रचना प्रारंभ किए चैतन्य मंगल ऐसा ही रचना है जिसमें ऐसे ही घटना से वर्णन है, जिस घटना को चैतन्य भागवत में या चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बा वृंदावन दास ठाकुर जिसको वर्णन नहीं किए, उन लीलाओं को उन्होंने चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर भाव से वर्णन किए हैं। हम जो देख रहे कि प्रकृति में जो चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग कारण नहीं, आविर्भाव का अंतरंग कारण है, राधाया प्रणय माधुरी किद्री सेवा नईवा ये न अद्भुत माधुरी मा किद्री सेवा मदीय सूक्ष्म चाष्य मदनुभवत किदृशम व्यति लोभात इति समाध्या समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। गौरहरि के जो आविर्भाव की जो अंतरंग कारण जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरितमृत में वर्णन करते हैं, ये मूल रूप में उन्होंने वहां से लिए, किससे? नरहरि सर ने सॉरी लोचनदास ठाकुर के चैतन्य मंगल में इसकी वर्णन विस्तार से की गई है। इसको किस प्रकार नारद मुनि ने गए हैं द्वारका में, गए द्वारका में जाकर मिले, जाकर भगवान श्री कृष्ण को पूछे एक जो कली युग आने वाला उसकी इतनी सारे जघन्य स्थिति में किसे क्या होगा, तो वहां पर रुक्मणी वहां पर वर्णन उसी प्रसंग में वहां पर लोचनदास ठाकुर इसके हिंट्स दिए हैं, लेकिन इनको विस्तार से वर्णन कौन किया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। इनकी कई लीलाओं से एक लीला है, बचपन में जैसे ही सूत्रखंड में एक लीला आता है, चैतन्य महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे और 2-2.5 साल की उम्र में थे, तभी उन्होंने एक बार बच्चों के साथ में खेलते खेलते जाते देखे कि एक जगह में एक कुत्ता ने सर एक कुत्ती ने बच्चा दी है, एक बार 8-10 बच्चे देते हैं कुत्तियां, तो एक एक पिल्ला को उठा लिए, पिल्ला बोलते ना, एक पिल्ला को सुंदर सबसे जो गोल गलिया बहुत सुस्त पिल्ला था उसको निमाय ने उठा लिए, उठा के अपने ऐसे ऐसे धारण कर लिए, अपने छाती में धारण करके ये पिल्ला मेरे, सब लोग बोले ए निमाय तू सबसे अच्छा वाला पिल्ला को ले लिया, हम नहीं के और दूसरा को नहीं लेंगे, तेरे साथ नहीं खेलेंगे, हम जा रहे घर। निमाय ने कहे कि नहीं नहीं अरे सब लोग मिलकर इसी के साथ खेलेंगे ना, अलग अलग क्या है, एक कुत्ता इसी पिल्ला को इसलिए सबसे अच्छा हमने इसको उठा लिया, इसी को लेके इसका चारों साइड हम लोग बैठेंगे और इसको बीच में छोड़ेंगे और इसके साथ खेलेंगे, ये जैसे कहेगा वो हम भी ऐसे कहेंगे, ऐसे खेलेंगे उसके साथ, बच्चे खेलते हैं। तो निमा एक लेके उठा के ले गए और लेके उसको फिर खेलने लगे, बच्चे के साथ खेलने लगे, खेलने खेलते खेलते उनमें से कोई एक बच्चा झगड़ा हो गया दूसरे के साथ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो भाग भाग के गई सची माता के पास, कह के देखा देख ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है और कुत्ता के साथ खेल रही है, कुत्ता की बच्ची को रख के देखा खेल रहा है, तेरे लल्ला सची माता तो सुना, अच्छा कौन है? निमाई, निमाई खेल रहा है कुत्ता को लेकर, कुत्ते के बच्चे को ऐसे लेके आए। तो सची माता ने देखे आए ए निमाई छोड़ कुत्ता को छोड़, नहीं 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 पिल्ला को नहीं छोड़ दे, ब्राह्मण घर में जन्म दिया छोड़ इसको, न्याय चुनूंगा और इसको रखे। और तो फिर मैं सची माता कुछ प्लान के क्या करूं इसको कैसे छोड़ाऊं कुत्ता है, तो वो दूसरे बच्चे बोले तुम लोग गंगा स्नान करने क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ बोले निमाई आए आए चलेंगे, कहाँ गंगा में स्नान करने जाएंगे, चलो चलो बड़ा मजा आएगा स्नान करेगा, और सची माता तो बोले डांटती थी आज तो बोल नहीं जाने के लिए, जाओ जाओ तो आ जा। तो फिर सची माता तेल लाकर लगा दी किसको, निमाई को तेल लगाया, बोले जाओ सो बच्चे लोग चले गए गंगा में स्नान करने, चले गए तो बांध के छोटे ऐ माँ इसको देखभाल करते रहना मैं आता हूँ, आने तक इसको देखभाल करना किसको पिल्ला को। निमाय चले गए गंगा में, उसको छोड़ दिया सची माता, खुल के रस्सी खुल के छोड़ दी, सुबह भाग गई वो उसको भगा दी, लेकिन और दूसरा बच्चा भाग भाग कहा वो स्नान कर रहा था, निमाय निमाय तेरे कुत्ता को तेरे पिल्ला को छोड़ दिया तेरी माँ, और निमाय तो फिर भाग भाग के आई है, हाँ कि कही माँ क्यों छोड़ दिया मेरे लिए पिल्ले, कहाँ गए मेरे पिल्ला है, सारे बच्चों को बोलेगी ढूंढो ढूंढो मेरे पिल्ला कहाँ गया, चलो चलो सब ढूंढते इसको है, सब बच्चे लोग इकट्ठे हुए, सब लोग फिर बड़े लोग भी कुछ उनके से मिल गए, ढूंढे कहाँ गया, निमाय तो रो रहे हैं, कहते मैं खाऊंगी नहीं कुछ नहीं खाऊं जब तक मेरे पिल्ला नहीं है, मैं खाना पीना कुछ नहीं है। ढूंढते ढूंढते देखिए कि नवदीप की नवदीप में बीच बाजार में कुत्ता खड़ा हुआ है, और छोटा जो पिल्ला को जिसको महाप्रभु ने आलिंगन किया था वो खड़ा होकर अगला दो पैर को छोटे छोटे पैर को ऐसे ऊपर को उठाया, पीछे पैर में खड़ा हो दोनों पैर को सामने उठाकर हैं क्या बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल गौरंग 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 है, हरि बोल हरि बोल गौरंग गौरंग, हरि बोल गौरंग गौरंग ऐसे बोल रहा है बस। हरिबोल हरिबोल गौरांग गौरांग ऐसे कहते कहते ऐसे नृत्य करते करते बच्चा वहीं पर देखते देखते शरीर त्याग दिया, आकाश में विमान आया, वैकुंठ से विमान आया और उसको लेके चला गया। हैं ये बचपन में ये लीला मैंने कोई वर्णन नहीं किया, यदि उसको भी तीनों सारे लीला मुरारी दास ने मुरारी गुप्त की कड़चा में लिखा हुआ है, लेकिन ये लीला को उन्होंने लिखा, इसको इन्होंने रोचन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य मंगल में इसको लिखते हैं। दूसरे कथा जो कि जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़कर सन्यास के लिए गए हैं, सन्यास के लिए जाते हैं घर बार छोड़ के, कहते कि उसी दिन रात को सुबह गए रात को चैतन्य महाप्रभु और विष्णुप्रिया के बीच में वार्तालाप हुआ था। दोनों बहुत वार्तालाप किए, क्योंकि विष्णुप्रिया देवी ने बड़े दुखी होकर चैतन्य महाप्रभु को पूछे हैं, हे प्राणनाथ, मैं सुन रहा हूं कि दूसरे लोग बोल रहे हैं आप मुझे छोड़कर सन्यास के लिए चले जाओगे, सन्यास लेके चले जाओ, सन्यास नहीं चले जाओ, ये क्या सच है, सत्य है? तो महाप्रभु ने इनको कहे, तुम्हारे स्वरूप को पहचानते रहे क्यों बिहोड़ होते, हम आए हैं लोगों को उद्धार करने के लिए। महाप्रभु ने इनको कृपा से फिर वो समझते वो भगवान की किस प्रकार भू शक्ति स्वरूपिणी है, और महाप्रभु ने स्वयं इनको दर्शन देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म स्वयं विष्णु रूप में इनको दर्शन देकर उनके मोह को नष्ट करते हैं, उन दोनों में बातचीत, इसके बाद घर त्यागते हैं। ये कथा कहीं चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितमृत में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसे कहा जाता है कि इनको एक बार वृंदावन दास ठाकुर डांटे, कहिए ये कहाँ से लाया तो लिखा इसको, ये कैसे लिखा तो ये कहाँ से लाया, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर की जो माँ है कौन, नारायणी देवी, इन्होंने कहे कि जिस रात में चैतन्य महाप्रभु ने गौरांग ने घर छोड़कर संन्यास के लिए गए थे उस रात को मैं उनकी भवन में था, कहाँ, मैंने सची के आंगन में था, उस दिन वहीं सोया था सची माता के साथ, ये बात सच है, मैंने सुना हूं दोनों को बातचीत करते हुए। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर चुप हो गए, तो प्रमाण है जो कि मैंने कि लोचन दास ठाकुर भी जो वर्णन की है लीलाओं को उसको हम झूठ नहीं कह सकते, वो है प्रमाण, तो नारायणी देवी ने साक्ष्य देकर प्रमाण किया कि नहीं ये जो लिखा है लोचन दास ये सत्य है, दोनों के बीच में जो जो गौरांग और विष्णुप्रिया के बीच में जो बातचीत हुआ था जिसको इन्होंने लिखे हैं सत्य है। और कई कथा कि एक बार महाप्रभु ने जा रहे थे संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते सब पार्षदों के साथ जा रहे थे, महाप्रभु अकेले जा रहे नहीं, ये संन्यास के लेने के बाद जा रहे थे सीधे, महाप्रभु को अकेले जा रहे थे आगे आगे और पीछे पीछे लोग जा रहे थे दूसरे लोग कीर्तन करके, महाप्रभु ने आगे जा देखे कि एक दही बेचने वाली है, बेच रही दही है, मटके बोले मुझे प्यास लग रहा है मुझे दही चाहिए, बोले लीजिए, तो महाप्रभु दोनों हाथ पूरा उठा लिए मटका को, पूरा मटका उठा के इसको पूरा पी लिए, पूरा मटका पी के फिर रख दिया और बोला पैसा दो, बोले पीछे आ रहे हैं हमारा लोग वो देंगे आपको, कह के बस वो चले गए, और पूछे जो आ रहे थे नित्यानंद प्रभु आ रहे थे गदाधर प्रभु आ रहे, लेकिन वो लोग ये बोला आपका जो एक सन्यासी जा रहा था सामने, सन्यासी सारे मेरे हमारा दही को पी लिया पैसा नहीं दिया, बोला तो आप लोग मेरे आदमी पीछे आ रहे हैं वो लोग पैसा देंगे, आप लोग दो पैसा, तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा कहाँ, हम कहाँ देंगे, बोले अच्छा आप लोग पैसा नहीं है, देख लेकिन नित्यानंद प्रभु को देख कर दर्शन के तो उसका बड़ा मुग्ध हो गया वो है, कह के ठीक है पैसा तुम्हारे पास भी पैसा नहीं है तो वो जो सन्यासी है ना इसको बोल देना कि मैं इसको दान में ही दे दिया, वो दही वो पी लिया उसको दान में दे दिया बस, लेकिन ये जो कह दिया वो लोग हंसते हंसते सो जा रहे थे, लेकिन इतने कहकर बोला अपने जाना घर, ऐसे जो उठा रहा था अपने से बर्तन देख रहा कि वो जो मिट्टी का बर्तन जिसमें दही भरा था जिसको महाप्रभु ने पी लिए थे उसको उठा था, बहुत वजन लग रहा है, इतना वजन कैसे इतना वजन हो गया, जब उन्होंने खोला देख रहा कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, हीरा लीला मोती माणिक्य सोना है गोल्ड डायमंड से भरा हुआ है। ये लीला और अन्य दूसरे अन्य पुस्तक में वर्णन नहीं है उसको, इनको वर्णन करते हैं लोचनदास ठाकुर। इस पर कई छोटे छोटे और कहानियां हैं, लेकिन विशेष रूप में अंतिम लीला को जब अंत करते हैं चैतन्य मंगल को एक विशेष लीला वर्णन करते हैं किस प्रकार गौरांग महाप्रभु ही स्वयं जगन्नाथ हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, इनमें तीनों में अंतर नहीं है। इन्होंने कहते कि एक दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण बहुत गरीब था, रहता था रंगनाथ जी के पास में, बढ़कर बहुत प्रार्थना किया रंगनाथ को श्रीरंगम में, मुझे धनी बना दो, कितना भीख मांगते रहूंगा लोगों को, पेट भर, पेट मेरे भरता नहीं, हर दिन मांग के खाना पड़ता है, मुझे धन दे दो, मुझे धन दे दो प्रार्थना करते रहा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसे ही घूम घूम के अन्य तीर्थ में सोचा कि नहीं नहीं ये कलयुग में कहते कि जगन्नाथ बड़े दयालु है, जगन्नाथ सबका इच्छा पूर्ण कर देते हैं, से पुरी में आ गया, पुरी में आकर जगन्नाथ जी को लेकर डेली प्रार्थना करता था, जगन्नाथ क्या दो तो मुझे हैं, सुख संपत्ति घरे आवे, दुख मिटे तनका, धनंग देही हैं, जनंग देही, ऐसे करीब प्रार्थना करता डेली जाकर हैं, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था, मुझे धन दे दो, मुझे गरीब मैंने गरीबी से मुक्त कर दो, मैं धनी बना दो, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कई साल चले गया कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन सोचा कि अरे शरीर को रखने का धारण करने की जरूरत नहीं है, भूखे प्यास में रह के क्यों ऐसा है, भगवान तो मेरे प्रार्थना नहीं सुनते, शरीर को त्याग दूंगा, समुद्र में घुसकर शरीर को त्याग दूंगा, समुद्र प्रवेश करके, ऐसा सोचकर जा रहा था, समुद्र किनारे पहुंचा, इसको अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा, आकाश से शून्य से एक व्यक्ति, विशाल का व्यक्ति अपने आप ऐसे शून्य में आकर उतारा किनारे, समुद्र किनारे किनारे उतार कर उन्होंने अपने साइज को, फिर विशाल काय था लेकिन अभी अपने मनुष्य का साइज बना लिया, फिर अभी कलयुग की मनुष्य का साइज ऐसे साइज का हो गया, वो कि जो आया ये बड़ा आश्चर्य लगा, ये कौन है, तो इसको जो सुइसाइड करने वाला जो था वो भूल के इसका पीछे पीछा करने लगा है, तो पूछा आप कौन है, प्रणाम किया, आप तो मैं देखा अभी आकाश में विशाल रूप में थे, अभी जब नीचे आ गए छोटा बन गए और ऐसे फिर चल रहे, तो उन्होंने कहा कि तूने मुझे देख लिया, इसे लगता कि जगन्नाथ की कृपा है, नहीं तो तू मुझे दर्शन कैसे कर लेगा मेरे को है, इसलिए मैं बताता हूं कि मैं स्वयं विभीषण हूं, हैं मैं विभीषण हूं, अभी भी विभीषण जीवित है, अमर में जो कई अमरों के नाम शास्त्र में आता है उनमें से विभीषण आज भी जीवित है, रामचंद्र जी के आशीर्वाद से है, तो मतलब विभीषण हूं, मैं जा रहा हूं किसको दर्शन करने, जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाता हूं, प्रमाण है शास्त्र में, प्रत्येक दिन जमराज भी आते हैं, विभीषण जो अमर गण आते हैं, सर देवता इंद्र भी आते हैं, आके जगन्नाथ जी को दर्शन करके फिर मैनेजमेंट करते हैं, ये मैनेजमेंट के हेड है, जगत के नाथ हैं बैठे दर्शन आते, तो बोला ठीक है, तो उनके पीछे पीछे बोले कि विभीषण है, इसके पास भी बहुत पैसा होगा, लंका का राजा है, ब्राह्मण को तो इंटरेस्ट था पैसा कैसे मिल जाए, तो बोला आज भगवान को तो प्रार्थना कर करके दिया नहीं, अभी विभीषण बोल रहे ये विभीषण है लंका का राजा, सोना का लंका में सोना, इसके पास बहुत पैसा होगा, इसके पीछे पटा के कुछ ले लूंगा है, तो उसके पीछे पीछे पर चलने लगा। विभीषण सीधे आकर जगन्नाथ मंदिर को नहीं गए, गंभीरा में प्रवेश के बीच में रास्ते में समुद्र जाने से रास्ते में काशी मिश्रा की काशी मिश्रालय है जहां पर महाप्रभु रहते थे, गंभीरा कहते, वहां प्रवेश किया, प्रवेश करके जाके गौरांग महाप्रभु बैठे थे, उनको दंडवत प्रणाम किया, वहां बैठा, बैठकर कुछ समय तक गौरांग महाप्रभु और विभीषण में बातचीत हुआ, क्या बात करते थे कोई समझ नहीं पाते, वो अलग भाषा कुछ था है। बस बातचीत होने के बाद विभीषण जब विदाई लेकर आ रहे थे तो महाप्रभु ने कहे कि देखिए ये जो व्यक्ति तुम्हारे साथ आया ना ये अपना कर्मफल को भुगता रहता है लेकिन ये समझता नहीं है, वो मुझे सब समय दाई करते रहता, मुझे गाली देते रहता है, मेरे को धनी नहीं बनाया है। विभीषण कहा कि आप यदि चाहते तो मैं इसको कुछ धन भी दे सकता हूँ, को दे दूं, इसको भी कुछ दे देता हूँ, दे देता हूँ इतनी, मेरे पीछे पीछे भी चल चल के आया कहाँ से, समुद्र से, और मुझे कैसा देख सकता है ये, मैं लगता कि आपका भी कृपा है तभी तो वो मुझे देखा हमें, तो कहे कि ठीक है विभीषण पे हैं आपके जैसे, महाप्रभु कहे कि ठीक है, लेकिन रास्ते में जो आया देखिए फिर वो से फिर समुद्र के मार्ग पर वापस आया, अब पुरी का जगन्नाथ मंदिर में नहीं गया विभीषण, तो सीधा बस महाप्रभु को दर्शन कर फिर वापस आया, तो इसको बोला है पूछा बार बार, अरे आप तो जगन्नाथ दर्शन करना है ना, जगन्नाथ दर्शन करना ना, तुम जगन्नाथ मंदिर तक गया नहीं, तो विभीषण ने कहे कि मूर्ख तुझे तो समझ नहीं हुआ, साक्षात जगन्नाथ को मैं दर्शन करके इतना समय बातचीत किया है, दर्शन किया और बातचीत किया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, वही साक्षात जगन्नाथ है, वो दारू ब्रह्म के रूप में मंदिर में बैठे, ये साक्षात यहां पर विराजमान है, तो बोले हाँ जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो बोला अच्छा ये साक्षात जगन्नाथ है, बोले हाँ उनसे परमिशन भी मिल गया, तुझे धन चाहिए तो लेकिन विभीषण की एक क्षण का सत्संग है, लवे मात्र साधु संगे है, तुलयाम लवे नापि नो स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशीष है। भगवान के संग से भी अधिक महत्वपूर्ण है किसके संग करना है, भक्तों के संग। ये जो एक क्षण विभीषण के संग किया उससे उसकी भौतिक इच्छाएं सब खत्म हो गए। अब जो धन धन करता था इतने दिनों से वही विभीषण देने पर बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए है, फिर कहे मुझे ले चलो, मैं अपराध किया, वो जगन्नाथ जी को दर्शन करके भी भगवान को मैं पहचान नहीं पाया है। फिर आया, फिर आकर महाप्रभु को प्रणाम किया और विभीषण कहने पर फिर इसको गौरांग महाप्रभु ने क्या प्रदान किए, नमो महा कृष्ण प्रेम है, उसको प्रदान कर दिए, कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये भी ये लीला भी चैतन्य मंगल में अंतिम है खंड में वहां पर लास्ट में ही इसको वर्णन करते हैं लोचनदास ठाकुर। इसी प्रकार लोचनदास ठाकुर की लोचन जो पढ़ेंगे हम चैतन्य के चैतन्य मंगल ग्रंथ को है, ये भी इसको ये भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर के प्रभुपाद कहते कि बहुत प्रिय थे चैतन्य मंगल, वो प्रिंटिंग करके के लोगों को बांटते थे है? जो स्कॉलरली लोग इनको चैतन्य मंगल देते थे, जो गांव के लोग इनको चैतन्य भागवत देते थे, कौन है भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर को प्रिय है। भक्ति सरस्वत ठाकुर प्रत्येक दिन एक चैप्टर पढ़ते थे चैतन्य भागवत से, चैतन्य चैतामृत से तथा चैतन्य मंगल से नियमित है पढ़ते थे। इसलिए ये चैतन्य मंगल ज्यादा परिचित नहीं है, हम चैतन्य भागवत को जानते हैं, चैतन्य चरितामृत बहुत पढ़ते हैं है? लेकिन ये ग्रंथ को चैतन्य मंगल बहुत रेयर लोग पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां सब है, जो कहानियां आप चैतन्य चरितामृत में चैतन्य भागवत में नहीं मिलेगा है? इसलिए चैतन्य मंगल को पढ़ना चाहिए। मूर्खजन कहते कि वो कहते बूढ़े लोग, हम बूढ़े लोग इसको पढ़ो, इसको चैतन्य मंगल को, चैतन्य मंगल मिलता है हिंदी अनुवाद अभी बाजार में ही मिल जाता, अभी खाली हिंदी श्लोक माने हिंदी में बंगाली को, लेकिन बंगाली पेयर हिंदी में लिखा हुआ है, मिल जाता है हिंदी में लिखा हुआ बंगाली पेयर और हिंदी अर्थ हिंदी मीनिंग है, बस बंगाली पेयर है हिंदी में, कोई कमेंट्री नहीं बस है। चैतन्य मंगल जिसको पढ़ना भी चाहिए। अब जो चैतन्य लाग है गौरांग नहीं गौरांग जिसकी मुख में गौरांगे के नाम उच्चारित तो होता है उसको ही राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्त हो जाता है। गौरांग ने जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी, वृंदावन दास कौन कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर है। इसलिए गौरांग की लीलाओं को बड़े मधुर लीला है, गौरांगेर मधुर लीला जारा करने प्रवेशिला हृदय निर्मल हेला, हृदय निर्मल हेला तार। इसलिए गौर कथाओं को गौर लीलाओं को अवश्य नियमित पढ़ना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। गौरांग की कृपा बिना आप राधा कृष्ण की लड़ाई में प्रवेश नहीं कर सकते हो। है श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बास, ब्रजभूमि में बास करने के लिए आपको है नवद्वीप परिक्रमा करना जरूरी है, उसको भी चिंतामणि धाम के रूप में जो समझा है, जो गौरांग के चरण में शरणागत हुआ है तभी इसको कृष्ण प्रेम मिलता है, फिर ब्रजवास होता है। इसलिए हमें चैतन्य लीलाओं को भी पढ़ना चाहिए और चैतन्य लीलाओं को स्मरण भी करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो चुका है, कई किसके प्रश्न है, किसके कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं। लोचनदास ठाकुर तिरुभा महा महोत्सव की जय, श्री लोचनदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। अच्छा एक गीत गाते हैं, श्री लोचनदास ठाकुर के एक भजन गाएंगे, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसको लाइक करते थे भजन है, कई भजन अच्छा है उनकी, ये भी एक
परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र
दोता
परम करुण पहु दुई जन निताई परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सरसिरो मणि सब अवतार केवल आनंद कंद केवल भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी भज भज भाई भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया से रसे मजिया विषय छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो परम करुणा पहुँ दुई जन निताई गौर चंद्र परम करुणा सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंद केवल देखो रे भाई त्रिभुवनी नाई हे मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवनी नाई हे मन दयाल दाता पशुपाखी झुरे पाषाण बिदरे पशुपाखी झुरे पशुपाखी झुरे पाषाण बिदरे पशुपाखी झुरे सुनी जार गुण गाथा सुनी जार सुनी जार गुण गाथा परम करुण पहु दुई जन मिताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंद केवल संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे ना होइल आस संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे ना होइल आस आपन करम भुजाए समन आपन
अपन करम भुजाए समन अपन करम कहे लोचन दास कहे लोचन दास परम करुण पहु दोई जननी ताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंद केवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय लोचन दास जय वैष्णव ठाकुर लोचन दास ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर लोचन दास ठाकुर जय ये परम करुणा बड़े प्रभुपाद जी को बड़े प्रिय भजन है। प्रभुपाद जी गाते थे तो एक बार अमेरिका में आंख से पूरे अश्रु के बहने प्रभुपाद रो रहे थे प्रैक्टिकली जो गा रहे थे। जब देखे कि मायामी टेम्पल में बाल्टी में कई जगह पर तीन चार पांच मंदिर में गौर नीता ही मुख्य विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित है, उनको देखकर प्रभुपाद जी बड़े प्रेम में विहोल होकर गाते थे परम करुणा पहु दुई जन निताय गौरचंद्र है। बहुत सुंदर मैंने जिस मंदिर में देखते थे गौर नीता है तो बोलते दिस इज द बेस्ट टेम्पल इन इस्कन में। मायामी में प्रभुपाद जी गए मायामी टेम्पल में कहे कि देखे कि गौर ने तो बोले कि दिस मायामी टेम्पल इज बेस्ट टेम्पल इन यूएसए। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे। बाल्टीमोर में कहते कि वो अमेरिका में जो गए वो गौर नेता विग्रह थे उनके पास प्रभुपाद जी गए और बहुत सुंदर गौर नेता आज भी है। तो गए तो प्रभुपाद जी ने उसमें मंदिर भी नहीं था, ऐसे छोटा घर एक घर के अंदर थे। प्रभुपाद जो गए थे उस बिल्डिंग अभी तक तोड़ के नया मंदिर फिर बना दिए, लेकिन वो बिल्डिंग में थे। प्रभुपाद गए इनको देखे 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 इतने बिहोल हो गए। प्रभुपाद खुद आरती किए इनको आरती किए और कहे कि बाल्टीमोर वही अल्टर में खड़ा होगा कोई तुम्हारे बाल्टीमोर वासियों को ये गौर नेता आए हैं आप सभी को सभी लेके जाएंगे कहाँ धाम ले जाएंगे हैं। गौरांग नेता आ गए बहुत हाँ गौर नेता को बड़े लाइक करते प्रभुपाद जी बहुत सुंदर भजन ऐसे ही लोचन दास कई भजन है। नीताय गुण मणि अमार नीताय गुण आनिया प्रेमेर वन्या भाषाल अवनी कई भजन है बहुत सुंदर भजन लोचन दास ठाकुर भी लिखे हैं। जैसे ही वृंदावन के कौन भक्ति मनोहर ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर भजन है, लोचन दास ठाकुर के बहुत सुंदर भजन है। वासुदेव घोष के भी कई भजन है। ओके श्री लोचन दास ठाकुर की जय श्रील प्रभुपाद की जय नीताय गौर प्रेमानंदी हरे कृष्ण।